أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله اللہ تعالیٰ میں محروم لوگوں میں نہ رکھے ہم بڑی خیر سے محروم ہو کر چھوٹی خیر پہ کافی نہ اپنے آپ کو سمجھیں اور آج کے سیشن کا ایک ایک لفظ بغیر کسی ڈسٹریکشن کے بغیر کچھ اور کام کیے اللہ ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق دے اور بیچ میں کوئی ایک سیکنڈ کا بھی بلنک بھی کہہ لیجئے کہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی چھوٹی کوئی ایسی فلکسویشن بھی نہ آئے جو ہمارے سننے اور سنانے میں رکاوٹ بنے اور آپ سب بھی خود سے یہ سب باتیں کہہ لیجئے کہ کیا آپ اس وقت سے لے کر کلاس کے ختم ہونے تک میں نے کوئی اور کمٹمنٹ تو اپنے دل دماغ پہ نہیں رکھی ہوئی اور اگر لی ہے تو اس کے اندر کہ آپ ابھی اس کا پورا نہیں لے سکیں گے میں نے جب یہاں آنا تھا تو میں اس سے پہلے اور کچھ نہیں لیتی تو جب آپ بیچ میں کوئی اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں یا بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے کسی اور کام کے لیے بھی جاتے ہیں تو گویا کہ آپ ابھی سے ہی پلان کر رہے ہیں اور آپ بار بار گھڑی دیکھیں گے اور سوچیں گے تو اس کورس کو آپ نے 110% کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے فائدے کی خاطر لینا ہے تاکہ پھر جو کام آپ کریں اس میں خیر اور برکت ہو آئیے شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ کل جہاں سے بات چھوڑی تھی اسی سے کنٹینیو کروں گی کچھ چیزیں خلاصے کے طور پہ جو ابھی تک ہم سورت کے حدود عربے کو سمجھنے سے متعلق کر رہے تھے میں دہراتی ہوں آپ اپنے کل کے نوٹس کو یا اپنے ذہن میں ریکال کیجئے اور بس لکھئے 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 اس میں جتنا آپ کا دل دماغ ڈلے گا جتنا فوکس ہوں گے قرآن کا مزاج سمجھ آئے گا تو ہم نے ابھی تک سورت صف کے اندر نہیں جھانکا فی الحال پورا جھانکیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورت رکھی ہوئی کدھر ہے بس آپ دیکھیے کہ آپ کو کوئی جیولری لینی ہے آپ کے پاس گھر میں ہے تو وہ جیولری ہے کدھر یہ امپورٹنٹ ہے نا کوئی بھی چیز ہے آپ کو بازار سے کوئی چیز خریدنی ہے کوئی گروسری لینی ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گروسری ملے گی کہاں سے بالکل قرآن پاک کو اس کے ٹیکسٹ اور اس کے کانٹیکسٹ اور اس کے ارد گرد سے کاٹ کر ہم جب صرف کتاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا سورت صف پڑھنی سورت صف پڑھنی جلدی کریں پہلی آیت شروع کریں کب شروع ہوگی دیٹ از ناٹ دا وے ہمارے اسلاف تو ختم کرنے کے لیے پڑھتے ہی نہیں تھے ہم دورہ قرآن میں ایک پارا ڈیلی پورا کرنے کو گول تو بناتے ہیں لیکن اس میں بس وہ جیسے تیسے ہی پورا ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ چیز ہے کدھر تو ابھی تک ہم نے سورت صف کے بارے میں جو تین باتیں میں نے آپ کو موٹی بتائی ہیں نمبر ایک کہ سورت صف قرآن پاک کی صورتوں کے چھٹے گروپ میں سے ہے اتنی بات یاد ہے اور وہ حصہ کون سا ہے جو سورت قاف سے شروع ہوتا ہے اور آگے چلتا جاتا ہے دوسری بات ہم نے دیکھی تھی کہ قرآن پاک کا یہ حصہ جس میں سے ہم گزرے ہیں اس میں مسبحات بھی ہیں اور تیسری بات جو بہت اہم تھی جس سے مجھے یقین ہے آپ کا دل کھلا ہوگا کہ یہ سارا حصہ قرآن کا مدنی دور کے سیکنڈ ہاف میں نازل ہوا یعنی 5 ہجری سے آگے چلیے تو 6 ہجری یعنی صلح حدیبیہ سے ایک سال یا اس کے پہلے کے دور میں اور اس حصے میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس میں کسی بھی جگہ کسی نان مسلم کو مخاطب نہیں کیا گیا الا یہ کہ نشان عبرت کے طور پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہو آج چند چیزیں اور دیکھ کر پھر میں آپ کو لے چلوں گی سورت صف کے اندر جھانکیں گے یعنی ابھی میرے حساب سے ہم لوگ سورت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد جب ہم اس کو لے لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک اگلی چیز یعنی فورتھ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ سورت صف سمیت جو ادھر کی صورتیں ہیں ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے اور وہ کیا ہے کہ مکی صورتیں اس میں بہت لمبی لمبی صورتیں ہیں نا اور یہاں ایک جملہ جنہوں نے کبھی نہیں سنی بات تو وہ ابھی لکھ لیں کہ مکی دور کا قرآن 2/3 آف قرآن پہ محیط ہے 2/3 یعنی آپ سوچیں نا کہ 100 میں سے 66 آؤٹ آف 100 66% قرآن نازل ہو چکا تھا کہاں مکہ میں ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں 3 بڑے مضمون تھے توحید رسالت اور معاد دوبارہ اٹھایا جانا और वो लंबी सूरतें हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है पढ़ने में सुनने में। बिल्कुल इस तरह सोचिए कि ये बिल्डिंग जिसमें इस वक्त हम बैठे हैं, इसके शीशे खिड़कियां दीवारें सब भी हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या थी? बुनियाद। अब जब बुनियाद डाली गई थी इस बिल्डिंग की, उस वक्त हम लोग इसमें नहीं बैठ सकते थे, लेकिन आज हम इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन ये बिल्डिंग अपनी बुनियादों पर खड़ी है। तो किसी भी मुसलमान के अच्छा या बुरा मुसलमान होने की बुनियाद इस बात पे कि उसका अकीदा, तौहीद, रिसालत और मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, ये कितना पुख्ता। अब जरा से जहन में चलिए कि मक्की दौर तो गुजर गया, आप मदनी सूरतें पढ़ने लग गए, और ये मदनी दौर की वो दौर है जिस वक्त इस्लाम को एक यूनिटी की जरूरत थी, मदीना में एक इस्टेब्लिश रियासत बननी थी। साहबा किराम वो सारी मुश्किलों से गुजर गए जो मक्का में जुल्म सितम की आंधी में और बर्बरियत में उनको डाला गया, और जो कुछ भी हुआ। अब वो तीन बुनियादी मजमून कहाँ से हम पढ़ें? नहीं समझे? देखिए, बुनियादी चीज़ें मक्की सूरतों में गुजर गईं और वो बहुत लंबी हैं। जैसे आपने कल भी देखा कि सात सुपारों में बुनियादी तौर पे बड़ी चार सूरतें हैं। सूरत बकरा है, आले इमरान है, सूरत निसा है, सूरत माईदा है। सातवें पारे के आलमोस्ट रुक के करीब सूरत माईदा पूरी होती है। और इन तीन में तौहीद, रिसालत और अकीदा। इतनी बात तो वाजे हो रही है ना? मैं कोशिश करूंगी जरा स्लो बोलो, मुझे कोई जल्दी नहीं है आपको सूरत शुरू करवाने की। ऐसी है ना? यानी हम मदनी सूरत पढ़ रहे हैं और ये बड़ा अहम सूरत का हिस्सा है। और आपको कल आखिरी नुक्ता मैंने ये दिया था कि इसमें वो सारे नॉर्म्स आए हैं जो मदीना को एक रियासत बनाने, एक यूनिटी के साथ मिलकर काम करके, कहते हैं ना कम खर्च वाला नशीन, कम वक्त दूर असर नताइज थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये काम करना चाहते हैं तो उनकी अपनी तौहीद, उनकी अपनी रिसाला और उनका अपना आखिरा क्या है? और आसान करती हूँ, आप सारे यहाँ बैठे हैं, आप में से वो लोग जो यहाँ अंसारुल्ला हैं, जो यहाँ का स्टाफ है, जो यहाँ की टीम है, अब आप सारे इस जगह आकर बैठे सीखने के लिए, आप यहाँ कब काम करेंगे, कितनी देर काम करेंगे, किस नीयत से करेंगे, इस सब का दारोमदार आपके ईमान पे है। आपकी तौहीद कितनी पुख्ता है, आपकी रिसालत कितनी पुख्ता है, और आपका मरने के बाद आपके इस नेकी का आपको कितना असर मिलना है, इस पे कितना फर्क है। इतनी बात क्लियर है? लिखिए, आज मैंने आपसे बच्चों की तरह एक ड्राइंग्स करवानी है आपके बोर्ड्स में। असल जो मुझे बात समझ आती है ना, जितना मैं ज्यादा पढ़ती जा रही हूँ ना, मुझे ये बात उतनी ज्यादा समझ आने लग गई और दिल उतना ही दर्द से भरता जा रहा है। पहले शुरू में हमें गम आता था, गुस्सा आता था, दुख होता था, वो बेचारे जो दीन से दूर है, ऐसे ही है ना? किसी बेचारे को देखा नमाज नहीं पढ़ रहा, किसी का हाल खुलिया खराब है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रग्स में है, कोई नशे में, तो बंदे को रोना भी आता है, दुख भी आता है, कहते हैं हमने इनके लिए जरूर कुछ करना है। मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। जब शुरू दर्ज किया, आज से माशाल्लाह जितने भी अल्लाह ने वक्त लिया, जिंदगी का हिस्सा ही गुजर गया, तो हर दर्ज में दिल में दर्द यही था, मौजू यही थे, गाने ना सुनो। मैंने वैसे कभी डायरेक्ट ऐसे मौजू दिए नहीं, लेकिन मिसालें होती थी। 25 साल तो हो ही गए होंगे इस सारे मामले में पड़े हुए, तो मुझे उस वक्त ये फील होता था कि नेकी ये है कि लोग गाने ना सुने, नमाज में रफुल यदैन करें, और मुसलमान दाढ़ी रखे, मर्दें औरतें बुरका पहने। ये चार छह बड़ी पेट चीजें थी। आज भी आप इंडो पाक के नॉर्मल जो मुबल्लिगीन है उनकी गुफ्तगू का यही मौजू होता है, या फिर फिकी मसलों में उलझा देते थे। एक वक्त ऐसा भी गुजरा कि मेरा यकीन था कि जो नमाज में रफुल यदैन नहीं करता वो जहन्नुम में जाएगा। सीधी सी बात है, मेरे अपने ताया फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो बहुत नेक, सब अच्छे थे, लेकिन वो किसी ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे जहाँ रफुल दैन नहीं करते। अब मेरे अब्बू और हमारे दूसरी तरफ से सिलसिला जो था, वहां जो जिस मस्जिद में जाते थे वहां नमाज में रफुल दैन करते थे। तो मैं अपने वो छोटे से दिल जिसमें ताया की इतनी शदीद मोहब्बत थी, तो मैं गम करती थी ताया अब्बू आग में जाएंगे, ये तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये नमाज में रफुल दैन नहीं करते और ये खुद को एक खास सेक्ट जो है वो नहीं कहते। बिलीव मी, ये थोड़े इल्म की करतूतें कह लें या थोड़े इल्म के ये वसफ होते हैं। तभी तो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान। मैं खुद सोचती हूँ अगर मैं आज से 10 साल पीछे, 15 साल, 20 साल पीछे वाली अपनी तालीम तरबियत जो मैंने की कराई इस पर जा चुकी होती, तो मैं तो खुद ही कल शर्मिंदा हो जाना था अल्लाह के हाँ। हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे पहले वो कहले बेदीनों की फिक्र थी ना, मैं अपने दिल की एक बात आपको कहूँ, मुझे अब दीनदारों की फिक्र है। मुझे ऐसे लगता है बेदीनों के लिए बड़े हैं, बड़ों की कर रहे हैं माशाल्लाह, छोटे छोटे टीवी पे प्रोग्राम आ रहे हैं, क्लिप्स जाते हैं। आपको पता ही ना कि अब सोशल मीडिया कितना आम हो गया, हर तरफ, यानी इल्म को अल्लाह ने फैला दिया। चले वो किसी का छोटा क्लिप को सुनता होगा, कोई किसी की कोई बात करता होगा, घरों में दीन जा रहा है ना, इधर की उधर उधर की। दिन में 120 पोस्ट हैं, तो आप भी इधर से उधर आती जाती देखते ही होंगे ना। तो ये है आम लोगों के दर्जे का दीन, जिनको अभी अब इतनी ही जरूरत है। आप कह सकते हैं कि उनका अभी इतना ही माइंडसेट है। अब मैं खुद अपने अंदर ये फील करती हूँ कि मेरी मिसालें, मेरी बातें, 2-3 क्लासें हुई हैं सुबह से अभी तक, मैंने एक चीज फील की है कि इस वक्त ज्यादा इसलाह की जरूरत, बेदीनों, जाहिलों और वो बिदात में पड़े लोगों से ज्यादा हम दीन सीखने सिखाने वालों की। बिलीव मी, आपको मैं बड़े दर्द से बता रही हूँ, बड़ी मोहब्बत से ये बात बता रही हूँ, क्योंकि शागिर्द तो हमेशा ही निकम्मे होते हैं, और अगर उस्ताद निकम्मा हो जाए फिर क्या होगा। और बच्चे तो हमेशा ही सताते हैं, बच्चों को तो अक्ल होती नहीं, मिसाल है हमारी जुबान में, तो अगर माँ बाप बेअकल हो जाए। आज हम दीन सीखने और सिखाने वाले, जिनके नामों की धूम है, जिनके इदारों की धूम है, और जिनके नामों पे क्या क्या मैं कहूँ, मैं हर एक की नहीं बात कर रही, मैं एक अपनी ही बात कर रही हूँ इस वक्त। हमें अपने आप को भी पहले मोर कंसाइज्ड होकर सोचना है कि जो मैं काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, सही तरीके से कर रही हूँ। कुछ दीन वालों का हाथ भारी है, कुछ की जुबान भारी है, कुछ की सोच ही स्कैटर्ड है। ये भी गोली डालो, ये भी डालो, इसमें ये भी दवाइयां, कई 6-4 किस्म की गोलियां देते हैं, कहते हैं कोई एक तो काम करेगी। हम इस वक्त टू दी पॉइंट तालीम नहीं दे पा रहे, हम टू दी पॉइंट मर्ज की तशखीस नहीं कर पा रहे। हम सबको एक ही कहना चाहिए कि वो लाठी से हांकते हैं, या एक ही हमाम में डाल के सबके ऊपर बात करते हैं। ये जो बात अब पॉइंट दी है ना, ये फोर्थ पॉइंट दे रही हूँ आपको, कि हम ये सूरत क्यों पढ़े और इन सूरतों में क्या है। दोबारा दोहरा देती हूँ कि ये सूरतें जो हम पढ़ रहे हैं मदनी हैं, इसमें वो जो तवील मक्की सूरतों में तौहीद, रिसालत और आखिरत की लंबी लंबी बहसें थी ना, अल्लाह ने इन हर सूरतों में कोई एक आयत, किसी में 2 आयतें, किसी में 3 आयतें, उनकी लाकर उसको कंसाइज कर दिया। मिला पॉइंट? यानी वन मोर पॉइंट अबाउट द सूरह सफ इज दैट, इंक्लूडिंग सूरह सफ के वो 4 बाकी भी, अभी आपको मैं मुसब्बे हाथ पे लेके चलती हूँ, तो उसकी तरतीब लिखेंगे हम, कि वो बातें जो मक्का में 13 साल में अल्लाह के नबी पर नाजिल हुई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह मदीना के आखिरी निसवे आखिर में नाजिल होने वाली इन सूरतों में अल्लाह ताला ने उनको कंसाइज फॉर्म में डाल दिया। समझ आई बात? कैसे? मसलन आप देखिए कि सबसे पहली चीज ईमान है ना, ईमान, युमिनूना बिल्ला, आमंतु बिल्ला, जालिकल किताबु ला रैब फी। अब इसकी सारी बहस सूरत तगाबुन में आ गई है, और जो लोग इधर भी हैं और जो घर से भी कुछ सुन रहे होंगे कि हमारा हिकमतुन बालिगा जो क्लोज रूम में होता है, बाहर से कोई इसमें नहीं आ पाता, उसमें आजकल हम सूरत तगाबुन कर रहे हैं, और अभी सिर्फ 3 आयतें की हैं। पूरा ईमान, फ्रूट्स ऑफ ईमान, ईमान के समरात, यानी अल्लाह कहता है ये तुम मुसब्बेहात और ये मदनी दौर के आखिरी दौर की ही 10 सूरतें पढ़ जाओ, तो तुम्हारा सारा अकीदा और सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। ईमान क्या है, उसके नतायज क्या है, ईमान और अमल साले का क्या ताल्लुक है, ईमान और निफाक क्या है, ईमान और कुफर क्या, वो सब सूरह तगाबुन में आता है। चलिए दूसरी चीज, जब आप अकीदे पे आते हैं तो आपको फिक्र लग जाती है कि मेरे अंदर ईमान है कि नहीं, तो दूसरा बुनियादी मजमून जो वो निफाक है, मुनाफ़क़त। कुरान में भी देख लीजिए, पहली 6 आयतों के अंदर ईमान की बात, 5 आयतों में, फिर 6 और 7 में कुफर की बात, और फिर 8 से ऑनवर्ड 20 तक में निफाक है। तो अब दूसरा बड़ा अहम मौजू है कि मदीना के आखिरी दौर में या सेकेंड हाफ में जो लोगों को ये सूरतों में मुखातिब किया जा रहा है, वो भी देख लें कि उनमें निफाक तो नहीं है। आप पीछे चलते हैं तो सूरत निसा, सूरत आल इमरान और सूरत तौबा में बड़ी डिटेल से निफाक है, और अगर इनमें देख लीजिए तो सूरत मुनाफिकुन। बात समझ रहे? यानी आपको ये मैं हिंट्स इसलिए दे रही हूँ कि कुरान एक पूरा 30 पारे बड़ा सा डब्बा, हाय हाय क्या करें, क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, फिर उसको छोटा 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 करते करते जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला इन सूरतों में आपको वो चीज़ें सिखा देता है। यदि सूरत मुनाफिकुन का पूरा टॉपिक ही वो है जो सूरत निसा, सूरत आल इमरान और सूरत तौबा में निफाक का पूरे कुरान में फैला हुआ है, अल्लाह ने उसको रख दिया। निफाक है क्या, शुरू कैसे होता है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, फिर इसमें इस मरज़ की अलामत क्या हैं, इसकी हलाकत क्या है, उसके बाद आप देखिए कि इससे बचना कैसे है, फिर इसका इलाज क्या है, निफाक का इलाज इन्फाक में, ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह सुबहाना ताला ने ये सब कुछ उसमें मुनाफिकून में रखा। 11 आयतें सिर्फ मुनाफिकून की, जिसमें अल्लाह ताला ने ये मजमून पेश कर दिया जो हमें समझ आ जाता है। अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि जब एक इंसान कुरान खोलता है और उसको ये बातें समझ आती हैं, तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एक तब्दीली आनी चाहिए ना। ये नहीं हो सकता कि आप खाना खाएं और आपका पेट ना भरे, और आप खूब चीनी खाएं और आप खूब ऑयली खाने खाएं और आप वेट ना गेन करें, ये नहीं हो सकता। ये बेकार बातें हमारे को कहते हैं, नहीं खाती तो मैं कुछ नहीं, फलां खाता तो बहुत थोड़ा लेकिन मोटा है, कोई कहता है हवा भरी हुई है, कोई कहता है फलां है, कोई है, ऐसा नहीं है। हम जो अंदर से होते हैं वो बाहर दिखते हैं, और जो बाहर से जाता है ना वो अंदर आता है। ये बहुत बड़ा झूठ होगा कि आप कहते हैं कि मैं अंदर से बहुत नेक हूँ, मैं बाहर से नहीं दिखती, फलां अंदर से बड़े ही नेक हैं, बाहर से नेक नहीं दिखते। मसलन आप तरबूज खरीदने जाएं, दुकानदार से कहते हैं मुझे तरबूज चाहिए, वो कहते हैं ये ले जाए, आप कहते हैं ये तो खरबूज है, वो कहते हैं नहीं ले जाए ये अंदर से तरबूज है। आपको कैप्सिकम चाहिए, बेल पेपर कहते हैं, शिमला मिर्च कहते हैं उर्दू में उसको, आप कहते हैं मुझे शिमला मिर्च चाहिए, वो कहता है ये रखे, आप कहते हैं तो बासी लग रही है क्योंकि उस पर बड़ी जल्दी से रिंकल आ जाती, वो कहता है नहीं ले जाए अंदर से बड़ी फ्रेश है। जिनका बाहर का ईमान, जिनके बाहर के हाल हुलिए, जिनकी बाहर की जिंदगी, जिनके बाहर के मामला ठीक नहीं दिखते, मान लीजिए कि उनके अंदर गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। अल्लाह सुबहाना ताला इंसान को देता है। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ जो बंदे को दीन में आने के बाद बड़ी अहम होती है, आप हैं मैं हूँ, हम दीन का काम करना चाहते, बिल्कुल सूरत सफ एग्जैक्टली नाजल ही उन लोगों में हुई थी जिन्होंने बैठकर अल्लाह के नबी के साथ एक मुस्लिम स्टेट बनने में मदद देनी थी। तब एक बड़ा थर्ड इशू क्या होता है बंदे के लिए, घर, मैं घर कैसे चलाऊं, मेरे घर को मैं कैसे देखूं, मेरा शौहर भी मुझसे खुश रहे, मेरे बच्चे भी आए, क्या कहते हैं कुरान और घर साथ साथ। अल्लाह ताला ने सूरत तहरीम में सारे इश्यूज उसमें डाल दिए, यानी जब आप इन सूरतों में आते हैं तो बीवियों की बातें, सूरत तलाक और सूरत तहरीम इस हिस्से में नाजिल शुदा सूरतों में आपको घरेलू जिंदगी सिखाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये 10 सूरतें जो ये छठे हिस्से में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से भी एक सिर्फ सूरत सफ हम पढ़ेंगे इस कोर्स में फिलहाल, उसमें पूरे कुरान की तवील बहसों, बड़े बड़े मौजूआत को जमा कर दिया गया। लिखिए सूरत हदीद, सफ, जुमा, मुनाफिकून, तगाबुन और सूरत तहरीम, ये वो बड़ी बड़ी सूरतें हैं कि जिनको पढ़ने के बाद इंसान को समझ आती है। चलिए ये भी बात हो गई, आगे चलिए हम देखते हैं, इन सूरतों को पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम सब भी देख लें कि इस्लाम की जो फीलिंग्स हैं हमारे लिए, इस्लाम मुसलमानों को क्या एक ही दर्जे में रखता है। मैं एक सवाल लिखवाती हूँ, फिर उसके जवाब में ये लिखिएगा, सवाल लिखिए। मिसाल है कि एक जगह 50 लोग पढ़ते हैं, 50 लोगों ने कुरान पढ़ा, एक ही उस्ताद है, 50 लोगों ने पढ़ा, जब वो सब पढ़ जाते हैं और पढ़ लेते हैं, तो क्या वो 50 के 50 बिल्कुल कार्बन कॉपी ऑफ देयर टीचर, या कार्बन कॉपी ऑफ सहाबा, या कार्बन कॉपी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ना ये हुआ ना ये कभी होगा। ख्वाहिश हो सकती है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में एक बेहतरीन उस्वे हसन है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो सहाबा थे उनमें भी बहुत फ़र्क था। अबू बकर सिद्दीक भी थे तो उमर भी थे, और इसी तरह से खातिब बिन अबी बलता भी थे, और उसमें एक बहुत ही कमज़ोर दर्जे का कोई साहबी भी होगा। तो आइए ज़रा थोड़ा सा एक माइंड मैप खुद बनाएंगे, हम अभी हम खुद बनाएंगे, सबने बनाना, ये आपकी एक्टिविटी होगी। आप में से किसी ने सेल की तस्वीर देखी है? सेल उर्दू में क्या कहते हैं? खुलिया। द फर्स्ट अकाई ऑफ ह्यूमन बींग इज सेल, हर चीज़ शुरू में सेल से बनी। कितनी चीज़ें उसमें होती हैं? तीन। अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। उसके साथ क्या होता है? प्रोटोन। और उसके बाहर क्या घूमते हैं? बस जिस तरह एक सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे अहम होता है ना, सेल की जो एनर्जी है ना वो अंदर होती है, सेंटर में, मिडल में, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अट्रैक्शन डाल दी जाती है। इस्लाम का एक सेल बनाइए, आप एक गोल दायरा खींचिए, ऐसे गोल दायरा लिखिए एटम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का एटम बनाएंगे, सबसे बीच एक दायरा लगाइए जो इस्लाम का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिस पे इस्लाम खड़ा है, इसको कहते हैं मुजाहिद। मोमिनों की डिफरेंट किस्में लिखाने लगी हूँ। सबसे आगे अंदर एक दायरे में लिखिए मुजाहिदीन। मुजाहिदीन कौन होते हैं? जिनकी जिंदगी जिद्दोजहद से भरी होती है। देखिए जोहद का लफ्ज उर्दू में भी आता है ना, जिद्दोजहद क्या है? फॉर अटमोस्ट तरीके से। मुजाहिद वो शख्स है इस्लाम में कि जिसने अपनी जिंदगी का गोल ये बना लिया कि आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू स्ट्रगल फॉर द अटमोस्ट सक्सेस। मसलन अभी इस्लाम की इमारत बनी नहीं, ये जहां सूरह सफ नाजिल हो रही थी ना, देखिए मेरा तो दिल कह रहा है कि मैं आपको साथ सीरत भी पढ़ाऊं और मैं कहूं कि आप घर से पढ़ कर आइए इन चीजों को, और देखिए हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक खबर मिलती है उधर झड़प हो गई, हर दो तीन माह के बाद नबी सल्लम किसी एक लश्कर को भेज रहे। देखिए ना, अगर मोटी मोटी बातें करें तो गजवाए बदर पहले ही साल के बाद, दूसरे साल के भी शुरू में, उसके बाद ओहद, गजवाए बनू नज़ीर, फिर उसके बाद आप आगे थोड़ा सा जाते हैं गजवाए हशर, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे जाइए तो आपको मुसलमानों के ऊपर एक और मुसल्लत जंग दिखती है। यदि मैं छोटी जंगों को स्किप भी कर दूँ ना, तो आप देखिए कि गजवाए खैबर है, फिर आप देखिए गजवाए तबूक है, हुनैन है, तकरीबन 19 से करीब कमोबेश बड़ी बड़ी जंगें मिलती हैं। और उसके अलावा टोटल नबी सल्लम ने जो पढ़ी, ये मैंने मुहसिन इंसानियत जब पढ़ाया उसमें सारे फिगर्स हैं, 200 के करीब जंगें हैं। और आप आम जुमला अगर इस वक्त भी मेरे हाथ में रही को मखतूम हो तो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, अल्लाह के नबी ने एक काफला खालिद बिन वलीद की मायत में उधर भेजा। अब आप सब मेरे साथ चलिए, जहनी तौर पर आप होती वहाँ मदीना का ये दौर जिसकी ये सूरत सफ़ा पढ़े, हर वक्त प्रोजेक्ट, यानी मैं आपकी टोन में अब बात करती हूँ, एक और कोर्स शुरू हो रहा है, अच्छा एक और क्लास करनी है, अच्छा यहाँ शॉर्ट कोर्स है, अच्छा वो बच्चों की क्लास शुरू करें, ये हालात है वहां तो मुजाहिदूनी का युकातिलून फी सबीलिल्लाह। आपके इस कोर्स की आयत है अल्लाह किनको पसंद करता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना युजाहिदून, नहीं कहा? हो सकता है घरों में बच्चे हों उनको टैकल करके आना जिहाद नहीं था, आपका अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी बनाकर सारी चीज़ों को एडजस्ट करके आना जिहाद नहीं? जिहाद तो मैंने भी किया, आज आपने भी किया, ये जिहाद तो बहुत छोटी चीज़ है। युकातिलून आखिरी दर्जा होता है। अल्लाह ने उस आयत में ये नहीं कहा कि इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना युजाहिदून फी सबीली, अभी हम जिहाद के दर्जे पे रो रहे हैं, आंसू कोई हमारे देखे, कोई हमारे गम तो कोई सुने, कोई हमारे दुख तो कोई सुने, सेल्फ पिटी का शिकार तो कोई हमें देखे कि और कितना और कहाँ। अल्लाह कह रहे जब तक युजाहिदून से युकातिलून के दर्जे पे नहीं पहुंच जाओगे तुम मेरे पसंद के स्टैंडर्ड के बनोगे नहीं। देखिए चॉइस होती है ना हर एक की, कुछ लोग जो होते हैं वो बेकार सी चीज पे भी खुश हो जाते हैं, उनकी चॉइस ही ऐसी होती है, कोई देखा रंग अच्छा है कपड़ा अच्छा ले लो ले लो बस ठीक है बहुत अच्छा, कुछ भी क्यों कहते कपड़ा कैसा है, डिजाइन कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है, तो सोचिए जरा अल्लाह की चॉइस क्या होगी। आपके लिए ये आयत आपके सामने, ये आप हर दिन देखेंगे आयत, फिर आप अपना मुस्तकबिल डिसाइड करेंगे कि आप ये जो अगले साल चंद ही रह गए हमारी जिंदगी के, अल्लाह को पता है अल्लाह ने हमें कितना देना है, लेकिन इन्नल्लाह युहिब्बुल लजीना युकातिलून। बस अभी सिर्फ युकातिलून फी सबीली को देखिए कि जो किताल के दर्जे, और किताल सबको पता है कि जिहाद की आखिरी सीढ़ी है, किताल में लड़ाई है, किताल में तीर है, किताल में तलवार है, हाँ युजाहिदून में कलम भी है, पेन भी है, आपका गाड़ियों को चलाकर इधर आना भी है, बात वाजे हुई? तो सबसे अंदर जिसके ऊपर एटम ऑफ इस्लाम ठहरता है ना, ये मुआशरे के वो क्रीम पीपल होते हैं, ये वो होते हैं जो जिहाद के दर्जे पे। मैं नहीं लिखा रही इसलिए कि हर एक ने लड़ाई तो नहीं करनी ना, तो लिखिए एक गोल दायरा बना के उसके अंदर लिखिए मुजाहिदीन। ये अलग बात है कि आज ये लफ्ज़ बदनाम हो गया, और यह मुसलमानों की कावर्डनेस की वजह से, यह आज हम मुसलमानों के अपने दीन को ना सीखने की वजह से। कल मुझे किसी ने एक सवाल किया, सवाल था इसलिए सुना देती हूँ, कि किसी बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया और उन्होंने फिर किसी एडमिन से पूछा कि ये शिया और सुन्नी क्यों है और कौन है, यानी वो जो सवाल हम तक पहुंचा वो ये था कि आप जरा ये पूरी बहस समेट के दें तो मैं अपने बच्चे को बताऊं कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, और वो पांच क्यों, और वो तीन नमाजें क्यों पढ़ते हैं। तो वो सवाल जिस अंदाज से मेरे पास आया था उसका मानी ये था कि मैं कम से कम आधा घंटा बोलूं, फिर पूरी हिस्ट्री सुनाऊं, फिर ये सुनाऊं। तो मैंने कितना लंबा जवाब दिया, मैंने कहा उस प्यारे से बच्चे को माँ कह दे कि बेटा ये इसलिए है कि लोग कुरान नहीं पढ़ते। इफ यू रीड कुरान देर इज नो फिरका, नो सुन्नी, नो शिया, नो हनफी, ना बंगाली, ना कुछ भी नहीं, तुम रह जाते। हमें पता ही नहीं है, यानी मैं अपनी बातें कर रही हूँ, हमें पता ही नहीं है कि असल दीन क्या है। तो आपके लिए आज डिफरेंट कोर्स ऑफ लाइफ आपको मिलेंगे, आपकी मेरी मर्जी है, मुजाहिदीन बनिए और लिखिए। नबी सल्लम का ही दौर था, अल्लाह के नबी मौजूद थे, आपकी जिंदगी अल्लाह ने रखी हुई थी, और अगर आप मेरी ये सारी बातों के साथ अपने हर पेज के कोने पे लिखते जाइए 6 हिजरी से लेकर आपके वसाल तक, ये सूरत तब की है, क्योंकि कल आपको ना निसवे सानी, नॉट निसवे अव्वल। तो आप सारी बातें मेरी सुनिए उस दौर के साथ, तो आपको आज अपनी पोजीशन समझ आ जाएगी। फिर आप अपने आप को लॉकर में रखेंगे, फिर आप जमीन पे नहीं रखेंगे, इफ यू आर अ मुजाहिद ऑफ इस्लाम। और मुजाहिद वो भी है जो चाबी खोलता है, मुजाहिद वो भी है जो सफाई करता है, मुजाहिद वो भी है जो झाड़ू पकड़ता है, मुजाहिद वो है जो कलम पकड़ता है। दो बातें लिखवा देती हूँ आपको। पहली बात लिखिए कि इस्लाम की इमारत गिरी हुई है तो उसको उठाओ, इस्लाम की इमारत गिरी हुई है तो उसको उठाओ। और दूसरी फॉर्म, अगर इस्लाम खड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह तो उसको खड़ा रखने में मदद दो। तो मुजाहिद कौन है, आज आप मुजाहिद की एक नई तारीफ लेके जाएं। मुजाहिद इज इक्वल टू इस्लाम की इमारत को खड़ा रखने वाले, वो मुजाहिद होते हैं। जब इस्लाम की इमारत बन रही थी, अब वही वापस आ जाइए, 6, मैं बार बार बोलूंगी, जान के बोलूंगी, 6 हिजरी से 10 हिजरी तक, नबी की जिंदगी के आखिरी 5 साल, उस वक्त इस्लाम के साथ क्या हालात थे, और उससे पिछले 5 साल पे लाइए, मदीना में आने से लेके 5 साल को देखिए, और पीछे 13 साल मक्का के ले लीजिए। तीन दौर लिखिए, अपने अपने नोट्स जैसे मर्जी बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, किचमिच करें, बड़े बड़े नोट्स नहीं लिखें, सिर्फ रैगिंग करें। 13 साल मक्का को इकट्ठा ही लिख लें, हालांकि उसके फिर आगे 3 पोर्शन हैं जो सीरत में मैं बड़ी डिटेल से बता देती होती हूँ। पहले 3 साल खामोशी, तुम कौन होते हो, हम तुम्हें क्या समझते हैं, तुम कौन सी किस खेत की गाजर मूली हो। दे डिडंट इवन नोटिस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कहते ये सर फिरा, कोई उनको लेके जा रहा है तो हकीमों के पास इलाज कराना चाहता है, कोई कहता है हमारे बुतों की मार पड़ गई, कोई कहता है ये जादूगर है, कोई कहता है कुछ, कोई अबू तालिब के पास आके कहता है देखो अपने भतीजे का इलाज कराओ। शुरू में तो लोग ये सोचते थे, लेकिन जब दावत आम हुई, जब सच की इस्लाम की कशिश लोगों को मिली और सईद रूहों ने उसको लिया ना, तो उस वक्त फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। ये था परसिक्वेशन का, मारेंगे कूटेंगे, और अब उस वक्त फिर गलियों में बिलाल भी हंके जाते थे और बीबी सुमैया भी शहीद की गई, 5 नबी में गालिबन बीबी सुमैया शहीद की गई, अम्मार बिन यासिर, और वो सारे कहानियाँ यासिर जो थे तकलीफ देने, जो जिसको लताड़ सकता था लताड़ गया। और उसके बाद फिर जो अगले साल थे 7 साल, या उसका थर्ड लेवल जो मक्की दौर का था, वो समझौतों पे आ गए, मान गए थे कि है कोई चीज़, ये दरिया का रुख अब रुकेगा नहीं, अब इसके आगे बात तो नहीं बांधते, तो चलो आओ कुछ तुम करो कुछ हम करते हैं। अल्लाह कहते कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद, के वो क्या कहते हो कि अच्छा तुम एक दिन तुम पूज लो हमारे खुदाओं को तो एक दिन हम तुम्हारे खुदा को पूज लें। अल्लाह ने वहां दो टोक फैसला कर दिया, लकुम दीनकुम वलिय दीन, पकड़ो अपना दीन अपने हाथ में रखो। ये था मक्की दौर। सवाल मेरा लिखिए, मुजाहिद का मफहूम आज आप समझ के जाइएगा। मैं बात छोटी करने की खातिर ये पूरे मक्की दौर को एक केस में डाल के आपसे सवाल करती हूँ, आपके ख्याल में मक्की दौर में मुजाहिदीन कौन थे? तीर भी नहीं उठा, तलवार भी नहीं उठी, कुफ्फु अईदियकुम सूरत निसा में आप पढ़ते हैं। एक वाक्या 13 साल में आपको नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी ने खुद कहा हो, या फिर आपने नहीं भी कहा तो कोई सर फिरा उठ के ना जाके खुद ही कोई काम कर रहा है। मेरे से नहीं बर्दाश्त होता, मैं अबू जाल का सर फाड़ आया हूं। हत्ता कि आपको पता है कि जब हजरत हमजा कैसे मुसलमान हुए थे, आपने सुना हुआ ना वाकया। इस्लाम नहीं था बट खून का रिश्ता था ना नबी से, दूध शरीक भाई भी थे, दोस्त भी थे और चचा भी थे। और अल्लाह के नबी की बातें और वो कहते हैं घर घर चर्चे और बदनामी तो हो ही रही थी। किसी जगह बैठे थे तो अबू जाहल ने नबी सल्लम की तौहीन कर दी। उसने तो बींगा रसूल की कि ये देखो ज़रा, ये कहते हैं कि मेरे पास फरिश्ता आता है और मेरे पास ये आता है तो वो आता है। तो हज़रत हमजा ने पकड़ के उसको सर फाड़ दिया कि तू मेरे भतीजे के बारे में ऐसा कह भी कैसे सकता है। वापस आ गए, आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, ए मोहम्मद तुझे पता है आज तेरे लिए लड़ के आया हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हुआ, सारा वाक़या सुना दिया। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, चचा मुझे बड़ी खुशी होती अगर आपकी ये कोशिश मोहम्मद यानी बिन अब्दुल्ला यानी अपने भतीजे के लिए नहीं इस्लाम के लिए होती। कहा अच्छा, तो वो क्या होता है। कहा फिर आप कलमा पढ़ लें जिसकी तरफ आपका भतीजा पढ़ता है। अच्छा, अशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा सवाल है आपसे, मक्की दौर के मुजाहिदीन कौन थे? पर्सीक्वेशन या जो उन पे टॉर्चर्स थे उसके मुकाबले में स्टैंड लिया। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, ये फर्स्ट स्टेप होता है। फिर सुम इस्तकामू, फिर डट गए यानी उनकी इस्तकामत उनका ध्यान था, यानी जो मुश्किल आई इस्लाम नहीं छोड़ा। इवन शाबे अभी तालिब में 3 साल तक, हत्ता कि दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। जब वो कज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो जानवरों की मेंगनियों की तरह जिस्म से गंदगी आती थी, क्योंकि जो जानवर खाते हैं वही ये खाते थे। जिन्होंने हक को जाना फिर माना फिर उसका इजहार किया, और उस इजहार के नतीजे में अगर कुर्बानियां देनी पड़ी और परसिक्यूशन हुई तो किया। झगड़े बर्दाश्त किया और झगड़े नहीं किए बल्कि फिर उस रास्ते में चलते गए। यानी वो जबकि अभी ये नोन ही नहीं थी चीज़, लेकिन अल्लाह के नबी के दस्तों बाजू बन गए। यानी कर सकते थे वो भी, मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन रिएक्शनरी नहीं बने। और वही था ना, इसबिरू वत्तकू वली मन सबर व गफरा। ठीक है, अब आप देखिए, जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो फिर उसके बाद तो कोई दूसरी चीज ही नहीं रहती ना। नफ्स की जिहाद किया, ईमान पे जमे रहे और ईमान उनका बढ़ता रहा। मलामत एक्सेप्ट नहीं की, यानी जो मलामत थी वला तखाफूना लौमत लाइम कह लीजिए, तौहीद पे जमे रहे, साथी बने रहे हर हाल में, नबी को नहीं छोड़ा। बाप दादा की रसूमात, सबसे बड़ा हिंडर, सबसे बड़ा जिहाद मैदान का वो था उधर। आप देखिए कि एक जमात बने, बाहमी जुड़े रहे, इस्लाम नहीं छोड़ा, हिकमत से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए इसको वापस अपने ऊपर लीजिए। 2021 अगस्त 17 है, आप और मैं हैं जिनको अल्लाह ने थोड़ी दीन की समझ दी। जब आप कुरान की तरफ आते हैं, जब आप इस्लाम की तरफ आते हैं, आज के दौर में आप ये मुजाहिद कैसे बन सकते हैं? क्या आज का दौर, यानी वो दौर था मक्का में जब अभी इस्लाम का कह लीजिए कि इस्लाम की इमारत बनी कोई नहीं, ये बुनियादें बन रही थी। ये जो कूटे जाते थे ना लोग, लिखिए इस्लाम की बुनियाद का सीमट और इस्लाम की बुनियादों का मटेरियल, ये बुनियान मरसूस जो इस्लाम की इमारत थी ना, इसकी बुनियादों में क्या डला? बिलाल, सुमैया, यासिर, खबाब बिन अरत, ये लोग इस्लाम की बुनियादों का मसाला थे। अल्लाह ने शीशे की बुनियादों पे इस्लाम नहीं खड़ा किया हुआ। हाय मैं मर गई, हाय मुझे फ्लू हो गया, हाय मुझे जुकाम हो गया, हाय मेरे सर में दर्द है, हाय मैं बैठ नहीं सकती, मुझे ज़रा 2-3 तकिए चाहिए, हाय मैं चल नहीं सकती, हाय मेरी मेट नहीं आई। अगर इस्लाम की बुनियाद ऐसे कच्चे लोगों पे होती, इस्लाम कब का गिर चुका होता। इस्लाम कभी नहीं गिरा। ये इसकी आयतन पे आएंगे तो क्लाइमैक्स होगा उस दिन इस सूरत का। मक्की दौर के 13 सालों के मुजाहिदीन की ये खूबियाँ थी। अगर आप में से किसी को इनमें से किसी एक लेवल पे आके आज सफर करना पड़ रहा है तो मुस्कुराइए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मक्की दौर में इस्लाम अननोन था, तूबा था, वो कह लीजिए कि अजनबी था, अद्दीन बदौ गरीबन, गरीब था, आज फिर गरीब है, आज फिर इस्लाम गरीब है। लेकिन नबी ने कहा था कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम फिर अजनबी होगा। क्या अजनबी नहीं है? आप अपने ही घरानों में चले जाएं और आप कहते हैं कि मैं अपने बच्चे का बच्ची का सादा सा निकाह करके उनको रुख्सत करूंगी और अगले दिन वलीमा करूंगी। कहेंगे हैं मत मरी हुई है, ये अमेरिका से आई हो तुम, ये तुम्हें क्या हो गया? क्यों, पैसों की कमी है तो मैं दिलवा दूं? और वो फलां बैंक जो है ना वो भी लोन देता है। इस्लामु बदौ गरीब, आज अब अपनों में अजनबी बंदे आंसू निकलते हैं। आप आज अपने सर पे दुपट्टा जरा अपने आपको शरई हुलिये में लेके जाइए, जरा अपनों में देखिए वो कितने हाथ हैं जो आपके दुपट्टे खींचते। ये तो अल्लाह ने इज्जत रख दी के मास्क पहना दिए। अल्लाह ताला अपनी नेमतें जिन पे जितनी डाल दें। निंजा टर्टल तो अपने ही लोग कहते थे मुंह को ढकने को, अब पर्दा करना। अब मैं कहती हूँ जिन्होंने अब नहीं करना उन्होंने फिर जिंदगी में कभी नहीं करना, कि वो इंतजार कर रहे हैं किस दिन ये पाबंदी हटे तो हम छोड़ें। अल्लाह ने कहा तुम्हें मैं हेड स्टार्ट देता हूँ, दिस मास्क इज अ हेड स्टार्ट फॉर दोस हु वांट टू कवर देयर फेस। तुम्हें ये डर लगता था ना कि बाहर क्या होगा। देखिए बीइंग अ वुमन मैं अपने ऊपर लेकर कहती हूँ कि कितना पुरसकून है बंदा, जिसको आपका दिल चाहे वो देखे बाकी देखे ही ना। इवन औरतों में भी कोई ना मुझे देखे, सनलाइट में मुझे कोई ना देखे, बाहर धूप में मुझे कोई ना देखे। लेकिन हम क्यों नहीं पहनते थे, क्यों नहीं करते कि जी फिर लोग क्या कहेंगे। तो अब तो लोग उनको अनसोशलाइज कहते हैं जो नहीं पहनते, कहते हैं इसको तमीज नहीं, ये अपने जरासीम हमें दे रहा। बात समझ गया ना। तो आपका मेरा आज के दौर में जो मैंने एक जुमला बोला ना वो फिर सुन लीजिए, कि अभी इस्लाम की इमारत बनी नहीं तो बनाने में मुआविनीन को भी मुजाहिदीन कहते हैं, और बन चुकी है तो उसको ठहरा रखने में भी रखे। ये घर बना ही नहीं, बिल्डिंग बनी नहीं, ये जगह ली नहीं अभी हमने, तो इसको लेने में हमें पैसे चाहिए, हमें एफर्ट चाहिए, हमें इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये भी एक जिहाद था, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ले लिए तो इसको रखना, इसको टेक केयर करना, इसका यह जिहाद नहीं है। ये इस्लाम की इमारत बनाने में, इसको खड़ा करने में एक जिहाद था जो कर लिया। तब तो जाकर घर सो जाए, आराम फरमाए। ये क्यों ली, और अब ये ले लिए तो अब अगला काम क्या, इसको खड़ा रखो, ये चले, इसको इस्तेमाल करो, और इसकी चीज़ों का ख्याल करो, और इसका मंथली खर्चों को टेक केयर करो। पैसा तो सबसे आखिरी चीज़ है जिसपे मेरी ज़ुबान ही नहीं खुलती, लेकिन इस जगह को हमारी ज़रूरत है, इस जगह को साफ रखने की ज़रूरत है, इसके बिजली पानी हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है ना। तो ये जिहाद उनका है जो अब इसमें काम कर रहे हैं।